ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, देवहूति का शोक, श्लोक संख्या 1। देवहूतिरुवाच सर्वं तत् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम्, अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूं, इसीलिए मुझे अभय दान भी दें। तात्पर्य, देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी, अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभयदान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है। उसे चाहिए कि वह न तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। वह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभय दान दें। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवहूति कहती हैं, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं, जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। हरे कृष्णा। कल विषय ये था कि पत्नी के कर्तव्य क्या होने चाहिए, और आज विषय है पति के कर्तव्य क्या होने चाहिए। इसलिए आज पत्नियों की संख्या अधिक है और पतियों की संख्या कम है। ये दुनिया में दोनों चीजें होती हैं, कर्तव्य और अधिकार। केवल कर्तव्य अधिकार हमें चाहिए, और कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो ये कैसे होगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। यदि किसी को अपने अधिकार को भोगना है तो अपने कर्तव्य भी संभालने होंगे, नहीं तो अपने अधिकार को भोगने का अधिकार नहीं है उसे। तो सारे समाज में भी आधुनिक काल में हम देखते हैं कि लोग अपने अधिकारों को मांगने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं, न कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। हर एक व्यक्ति जिंदाबाद मुर्दाबाद कह के अपने मांगे आगे रखता है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, अन्यथा हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उत्पात करेंगे। परंतु कितने व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि हमारे कर्तव्यों को भी हमें करना चाहिए। एक सभ्य समाज में सर्वप्रथम सुशिक्षित व्यक्ति अपने कर्तव्यों के बारे में सोचता है, ज्यादा ध्यान उसमें देता है, फिर अपने अधिकार के बारे में। अधिकार तो बाद में आता है। हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे कर्तव्य क्या हैं। और यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह सोचे तो यह समाज कितना सुखमय बन जाएगा। परंतु जब हर एक व्यक्ति अपने अधिकार के बारे में अधिक सोचकर अपने कर्तव्यों के बारे में कम सोचता है तो फिर संघर्ष हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारे गलत फहमियां हो जाती हैं। तो ये हर एक क्षेत्र में लागू होता है ये सिद्धांत, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो हम में से हर एक व्यक्ति को अन्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी होती है जीवन में। शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होगा जिसे अन्यों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब हम अन्यों की जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक प्रकार का नेतृत्व निभा रहे हैं, हम लीडर बन रहे हैं। चाहे घर में माता पिता हों, वो अपने बच्चों के लिए लीडर हैं। बच्चा माता पिता की बातों को सुनेगा, माता पिता प्रशिक्षण देंगे, प्रेम देंगे, अच्छी तरह से पालेंगे पोसेंगे बच्चे को, हर तरह की सुविधा प्रदान करेंगे, अच्छे शिक्षण उपदेश देंगे। तो इस तरह से बच्चा अपने माता पिता के ऊपर, अपने पालकों के ऊपर निर्भर होता है। तो वैसे माता पिता के कोई कर्तव्य होते हैं, उसी तरह से राजा है, राजा के कोई कर्तव्य होते हैं प्रजा के प्रति, क्योंकि प्रजा राजा के अधीन होती है। उसी तरह से शिष्य गुरु के ऊपर अधीन होता है, तो गुरु के कोई कर्तव्य होते हैं शिष्य के प्रति, क्योंकि शिष्य अधीन है गुरु के प्रति, तो गुरु एक लीडर है शिष्य के लिए। उसी तरह से घर में भी ऐसे वैदिक सभ्यता के अनुसार जो पति होते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए परिवार की। जिम्मेदारी लिए बिना केवल अपने अधिकार को मांगना ये उचित नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम किसी से सेवा लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है उनके प्रति। एक जगह तात्पर्य में ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी, जैसे जब कोई गुरु अपने शिष्य से सेवा स्वीकार करते हैं तो उनका कर्तव्य होता है कि वह कुछ इसके बदले में शिष्य को दें। तो वो क्या देते हैं? आध्यात्मिक उपदेश, आदेश देते हैं। सेवा आदेश उपदेश दिए बिना सेवा लेने का अधिकार नहीं होता। उसी तरह से किसी पाठशाला में, गुरुकुल में शिक्षक अध्यापक दक्षिणा लेते हैं, उनका अधिकार होता है बच्चों को ज्ञान देना। समाज में ब्राह्मण होते हैं, वो दक्षिणा लेते हैं लोगों से, अपने यजमानों से, परंतु उनका कर्तव्य होता है समाज में ज्ञान फैलाएं, लोगों को ज्ञान दें। यदि केवल हम दक्षिणा लेंगे और ज्ञान देंगे नहीं तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। आजकल ये एक बड़ी समस्या हमारे देश में है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, और बाहर भी बड़े शहरों में भी, जैसे ब्राह्मणों का व्यवहार होना चाहिए वैसे दिखाई नहीं पड़ता है। आजकल ब्राह्मण तो केवल नाम के रह गए हैं दुर्भाग्य से। और तीर्थ स्थानों में भी ऐसे देखा जाता है कि वो दक्षिणा आदि लेते हैं परंतु जो ब्राह्मण के कार्य होते हैं यथा तपस्या, अध्ययन, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह इत्यादि, वो सब नहीं करते हैं, ज्ञान देते नहीं हैं लोगों को, तपस्या नहीं करते हैं, केवल दक्षिणा लेते हैं। इसलिए उस दक्षिणा के साथ जो यजमान के कर्म आते हैं उसको हजम करने की आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने लोगों के कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं उस दान के माध्यम से। जब व्यक्ति दान देता है तो वो अपने कर्मों को भी साथ में देता है। इसलिए भक्त को चाहिए जब दान आता है तो सीधे कृष्ण के पास दे दे, ताकि उसके ऊपर कोई कर्म नहीं आए, क्योंकि वैसे भी दान लेना है तो कृष्ण के लिए लेना है, कृष्ण की सेवा के लिए हम लेते हैं। तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि वो तपस्या प्रचार आदि न करके दान लेते हैं और फिर जघन्य कार्यों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल अपना अधिकार चाहते हैं, दक्षिणा चाहिए, परंतु कर्तव्य क्या है कि हमें ज्ञान देना है लोगों को, आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी है, वो नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि जब हम किसी से कोई सेवा स्वीकार करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, हम उस व्यक्ति के प्रति ऋणी हो जाते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, हालांकि हम सोचते हैं कि बहुत सी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, निःशुल्क मिलती हैं, कोई भी चीज़ निःशुल्क नहीं है। यदि हम अपने घर में बिजली और पानी के पैसे नहीं भरेंगे तो फिर प्राधिकरण जो है वो बिजली के प्राधिकरण वो अपने बिजली काट देंगे, बिजली नहीं देंगे, जल नहीं देंगे नगर पालिका हमें। उसी तरह से हम भगवान की उपासना पूजा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, कम से कम देवताओं की उपासना नहीं करेंगे, तो पानी बिजली आदि की बातें वो कट कर देंगे, काट देंगे, फिर समाज में निसर्ग में उत्पात हो जाएगा, कहीं भूकंप हो गया तो कहीं बाढ़ हो गया, कहीं सुनामी हो गया। तो उसी तरह से हम जब ऋणी होते हैं हर एक व्यक्ति के प्रति, कृष्ण भक्ति में आते हैं तो ये ऋण मुक्त हो जाते हैं। फिर भी सामाजिक कई कर्तव्य हम निभाते हैं, हमने स्वीकार किए हैं, तो उनके अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। जब ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से हम सारे कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य कर्तव्यों को हमें करना नहीं चाहिए। देवर्षि भूताप तृणाम पितृणाम नायम ऋणी किं करो ऋणी राजन सर्वात्मना ही शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो इस श्लोक का आश्रय लेके कहीं हम ये नहीं समझें कि हमारे जीवन में अभी हमें कोई जिम्मेदारियां नहीं है क्योंकि हम कृष्ण के आश्रय में आ गए। नहीं, जिम्मेदारियां बल्कि बढ़ जाती हैं, हम कृष्ण के संदर्भ में इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। भक्ति में आने के पहले हम कर्तव्यों को या जिम्मेदारियों को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए निभाते थे, लेकिन अब हम कृष्ण के लिए निभाते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारियां भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं एक गृहस्थ के लिए, वो कृष्ण के संदर्भ में देखने चाहिए। पत्नी के जो कर्तव्य हैं, पति के कर्तव्य हैं, बच्चों के जो हैं इत्यादि। कल हमने ये सुना कि पत्नी के कर्तव्य होते हैं कि वो पति की सेवा करे, पति के व्रतों को का पालन करे, पति के प्रति अनुकूल भाव रखे, पति के जो रिश्तेदार हैं और मित्र हैं उनके प्रति भी अनुकूल भाव रखे। तो पति ऋणी हो जाता है पत्नी का, क्योंकि पत्नी से इतनी सेवा स्वीकार करता है। तो जब सेवा स्वीकार कर रहा है पति, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो कुछ दे पत्नी को। क्या दे? प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि पति को चाहिए कि पत्नी के प्रति जो उसका ऋण है वो चुकाए, क्योंकि पत्नी से बहुत सेवा लेते हैं रोज, तो ऋण चुकाना चाहिए। कैसे ऋण चुकाना चाहिए? दो तरीकों से। एक, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करके, आध्यात्मिक प्रेरणा देके, आध्यात्मिक वातावरण निर्माण करके, और अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अनुकूल और उपयुक्त वातावरण निर्माण करके, ये पहली बात। अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में पति को एक लीडर होना चाहिए। जैसे कर्दम मुनि थे देवहूति के लिए। दूसरी बात, पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा करे। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। किस तरह से रक्षा? न केवल शारीरिक रक्षा, ये तो है ही, न केवल आर्थिक रक्षा, ये भी तो है ही, ये तो करना ही चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रक्षा भी। शारीरिक रक्षा, आर्थिक रक्षा, मानसिक और भावनात्मक रक्षा और आध्यात्मिक रक्षा, ये पति के कर्तव्य होते हैं। तो इस तरह से पति ने यदि कार्य किए तो पति अपने कर्तव्यों को निभाएगा, फिर पति पत्नी का संबंध गृहस्थ आश्रम में बहुत सुखमय रहेगा। जब प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि लीडर कौन होता है, कि नेता कौन होता है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए, एक के बाद एक अच्छे अच्छे उत्तर दिए उन्होंने, अलग अलग उत्तर कई बार दिए। एक बार उन्होंने कहा कि लीडर वो होता है जो कभी जो चार जो हमारे दोष होते हैं उनसे मुक्त होता है। तो हम सोचेंगे, पत्थर पति सोचे भाई मैं तो चार दोषों से मुक्त नहीं हूं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, यदि हम परम लीडर, परम नेता कृष्ण के अधीन हैं और कृष्ण के वाणी को दोहरा रहे हैं और कृष्ण हेतु हमारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो फिर हम भी उन दोषों से मुक्त हो जाते हैं। हम जो कहते हैं करते हैं वो सही है, यदि वो कृष्ण के अनुसार हुआ तो। यदि हम भक्त हैं परंतु हम ऐसे कोई कार्य करते हैं जो कि श्री कृष्ण के अनुसार न हो, तो फिर वो सही नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के अनुसार हो तो हम दोषों से मुक्त होते हैं, फिर जो हम कहते हैं और करते हैं फिर वो सही है। दूसरी बात, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लीडर या नेता वो होता है जिसका अनुगमन करके लोग खुश रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो नेता वो व्यक्ति है जिसका अनुगमन करके लोग सुखी रहते हैं। अर्थात किसी का अनुगमन करके हम दुखी हो जाते हैं तो फिर वो अच्छा नेता नहीं है। हो सकता है हम में भी कोई गलती हो, ऐसा ही नहीं कि केवल नेता में कोई गलती हो। जैसे अच्छा राजा जब हो जाता है और चोर डकैतों को कोई स्थान नहीं देता तो चोर डकैत दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा प्रामाणिक नहीं है, राजा तो अपना काम कर रहा है, परंतु जो प्रामाणिक प्रजा है वो एक प्रामाणिक राजा के अधीन होकर सुखी रहेगी। प्रामाणिक शिष्य प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर सुखी रहेगा। उसी तरह से प्रामाणिक पत्नी एक प्रामाणिक पति के साथ रह के खुश रहेगी। तो पति को चाहिए कि उनके साथ में, उनके अधीन जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको सुखी रखें हर दृष्टि से। तो ये जो सिद्धांत है ये हर स्तर पर लागू होता है, चाहे परिवार के स्तर पे या सामाजिक स्तर पे, देश के स्तर पे। दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक लीडर को चाहिए कि वो आदर्श बने, एक आदर्श उदाहरण अपने व्यवहार से, अपने वचनों से करे, जिसका अनुगमन उनके ऊपर निर्भर रहने वाले लोग कर सकते हैं। यदि हम करते कुछ हैं, कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और ही हैं, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। जितना आदर्श हमारा व्यवहार है, जितना ताल, जितनी अच्छी तरह से तालमेल हमारे वचनों में, हमारे कार्यों में है, और हमारे वचन और कार्य का तालमेल जितना अच्छा और श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार है, उतना ही हम आदर्श रहेंगे हमारे जीवन में। तो आदर्श व्यवहार होना ये बहुत जरूरी है। और एक बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक लीडर को चाहिए, लीडर वो होता है, उसके केवल दो काम होते हैं। एक है कि वो उत्साही रहे, और दूसरा जो उसके ऊपर निर्भर हैं उनको उत्साही बनाए। आध्यात्मिक जीवन में, और ये करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। इसलिए जो भी किसी नेतृत्व के कर्तव्यों को निभा रहा है या निभा रही है, उनको चाहिए कि वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से भौतिक दृष्टि से भी बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान, फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं। तो आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श गुरु, इन सब का उदाहरण हम श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में देखते हैं। तो इसी तरह से यदि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं और बाद में अधिकार के बारे में सोचें, तो हमारा जीवन कितना सुखी होगा। खैर, ये बड़ा विषय है। राजा हो या पति हो, यदि वो कृष्ण के आश्रित हों, तो ऐसे कृष्ण के आश्रय में सारा वातावरण बहुत सुखमय रहेगा। माता देवहूति यहाँ कह रही हैं अपने पति कर्दम मुनि से कि आप मुझे अभय दान दें, निर्भयता, निर्भीकता। तो जो हम पे कोई आश्रित होते हैं, उनको निर्भीकता या अभय दिलाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। यदि हमारे ऊपर जो आश्रित हैं वो सदैव चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इसका मतलब है कि हम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं। तो हमारे ऊपर जो आश्रित हैं उनको चिंता से मुक्त करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो प्रभुपाद जी एक लीडर या नेता की और एक परिभाषा देते हैं कि जो सदा लगा हुआ रहता है अन्यों के, अर्थात जो व्यक्ति उनके ऊपर आश्रित है, उनके चिंताओं को नष्ट करने के लिए, जो चिंताएं लेता है अन्यों को चिंता मुक्त करने के लिए। कल ये हम भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे शाम को कि प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्ति में भी हम उतना ही आगे बढ़ सकते हैं जितना कि हम अन्यों के उद्धार के लिए सरदर्द लेने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर कुछ ऐसे गड़बड़ करें जिससे सरदर्द हो जाए, कहें कि हमें बताया गया कि सरदर्द लेना चाहिए, किसी सही काम के लिए, अन्यों की सहायता करने के लिए, अन्यों का उद्धार करने के लिए, अन्यों की भलाई के लिए, अन्यों के वास्तविक सुख के लिए, अन्यों की रक्षा के लिए हमें चिंता करनी चाहिए, अर्थात हमें सोच विचार करना चाहिए और ऐसे कार्यरत रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हिमालय में बैठने वाले योगियों को सरदर्द नहीं होता, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे मुझे कितना सरदर्द है। हर जगह संस्था में कितनी सारी समस्याएं, कोई किसी भक्त को ये समस्या, कहीं किसी देश में सरकार द्वारा बड़ा विरोध है हमारे आंदोलन के लिए, कहीं और कोई समस्या हो गई, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्थान को कलयुग में चलाना आसान नहीं है, तो कितना सरदर्द होता है, परंतु ऐसे सरदर्द से हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी सेवा में जो हमें कठिनाइयां होती हैं वो मेरे दिव्य आनंद के कारण है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इन कठिनाइयों को कठिनाई न समझकर उन्हें दिव्य आनंद समझते हैं। परंतु हां, केवल कठिनाई ले लेकर हम आगे नहीं चल सकते, इनके दौरान हमें सुख का अनुभव भी होना चाहिए। इसलिए कल हम ये बता रहे थे कि सुख के बिना जिम्मेदारी टिक नहीं सकती, और जिम्मेदारी के बिना सुख टिक नहीं सकता, दोनों चीजें हैं। पहली बात, सुख के बिना जिम्मेदारी टिक नहीं सकती। हम पारिवारिक जीवन में हैं, हम कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं है, कोई गड़बड़ है परिवार में, तो जिम्मेदारी निभाते निभाते व्यक्ति फिर ऊब जाएगा, हैरान हो जाएगा, और हैरान होकर फिर और पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए परिवार में जो भी हैं उनको देखना चाहिए कि कैसे हर एक व्यक्ति परिवार में सुखी रहे, क्योंकि कर्तव्यों को निभाते निभाते जब तक सुख नहीं मिलेगा तब तक कर्तव्यों को निभाना बड़ा बोझ बन जाएगा, फिर आध्यात्मिक जीवन में बड़ा बाधक वस्तु बन जाएगा। इसलिए कर्तव्यों को हर एक व्यक्ति को ऐसे इतनी अच्छी तरह से निभाना चाहिए कि सभी लोग सुखी रहेंगे और साथ मिलकर कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। दूसरी ओर हमें केवल सुख चाहिए परंतु जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, बिना जिम्मेदारी के सुख भोगना चाहते हैं, तो ये भी उपद्रव का कारण बन जाएगा। इसलिए सुख गृहस्थ आश्रम में भोगते हुए भी या कहीं भी जिम्मेदारी से करना चाहिए, मर्यादित रूप में करना चाहिए, जिससे कि हमारे भक्ति के पथ में कोई बाधा न आए। तो ऐसे वैदिक सभ्यता बहुत सूक्ष्म है, इनको समझना ये बहुत आवश्यक है, परंतु आजकल इन बातों के इन विषयों में चर्चा नहीं की जाती। क्यों? जैसे हम पहले कह रहे थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने केवल कर्तव्यों पे क्षमा कीजिए अपने अधिकारों को भोगने में लगा हुआ है, कर्तव्यों के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है तो बस पति पत्नी अलग हो जाते हैं। और इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी से काम लेना नहीं चाहते आजकल लोग, केवल सुख चाहते हैं, इसलिए आजकल बंबई जैसे शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, भारत में, पश्चिम देशों की बात दूर है, आजकल लोग बिना विवाह के साथ में रहने शुरू कर दिए हैं। भारत में काफी यह भी प्रचलित बात है। क्यों? क्योंकि बाद में झगड़ा होना ही है ना, और अलग तो होना ही है, और फिर वो वकीलों के पास जाना, अदालत में जाना, वो पैसे खर्च करना, और फिर एक दूसरे की कितनी सारी समस्याएं होती हैं। तो चलो ऐसे ही साथ में रहते हैं, सुख भोगते हैं, और जब झगड़ा हो जाएगा बड़े आनंद से अलग हो जाते हैं, फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो इसके पीछे छूट भूल क्या है? क्योंकि हम सुख भोगना चाहते हैं बिना जिम्मेदारी के। जिम्मेदारी लेते हैं तो सरदर्द होता है, पारिवारिक जीवन में भी सरदर्द बहुत होता है, होता है ना? सब लोग बड़े उत्साह से हाँ कहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पति को चाहिए कि परिवार की रक्षा और पत्नी की रक्षा करते करते कष्ट होता है, लेकिन कष्ट को सहन करना चाहिए खुशी से, शिकायती स्वभाव नहीं रखना चाहिए कि अरे क्या है, ये सब, ये भी करना है, वो भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, ये भी करना है, ये कर्तव्य निभाना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरेक को ऐसे कर्तव्य निभाते समय जो कष्ट होता है उसको खुशी से स्वीकार करना चाहिए। जैसे पत्नी के भी कर्तव्य हम कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने भगवद गीता के तात्पर्यों में, जब गर्मी बहुत होती है और पत्नी को रसोई घर में जाकर रसोई बनाना होता है तो उस समय इतनी गर्मी में कष्ट होता है, लेकिन वो कर लेती है। उसी तरह से पति को बाहर दुनिया में धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए इधर उधर जाते हैं, सहन करना चाहिए। परंतु चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति। तो ये जो भूमिकाएं हैं जो निभाए जाते हैं दुनिया में, कोई पति तो कोई पत्नी तो कोई ये या वो किस लिए हैं? केवल कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम एक कोई स्थिर अवस्था चाहते हैं जिसमें स्थित होकर हम अच्छी तरह से भक्ति में आगे बढ़ें। एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति हमारे लिए निर्माण हो जाती है जिसमें कि रहकर हम शांति से सुखी अवस्था में भगवान की भक्ति कर सकें। क्योंकि ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, हर पल कुछ न कुछ कष्ट आएगा, इसलिए सहन करना चाहिए। इस उद्देश्य से कि इन कर्तव्यों को हम निभाएंगे कृष्ण की सेवा के लिए। और एक बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी किसी नेतृत्व की सेवा या कर्तव्य निभा रहा हो, उसे चाहिए कि वो अपने ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको अपनी संपत्ति न समझे, अपने भोग के साधन न समझें। जैसे आदर्श गुरु कभी अपने शिष्य का भोग नहीं करेगा, शिष्य का गलत तरह से व्यवहार नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, ठीक उसी तरह से पति को भी चाहिए कि वो पत्नी को एक भोग की वस्तु न समझकर, अपनी संपत्ति न समझकर कृष्ण की संपत्ति समझें। परिवार में पत्नी को जानना चाहिए कि ये परिवार कृष्ण का है, पति को भी जानना चाहिए कि ये परिवार कृष्ण का है। तो दोनों पति पत्नी साथ मिलकर इस परिवार को कृष्ण का परिवार समझ के कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। तो ऐसे प्रभुत्व की भावना को त्याग कर कृष्ण के स्वामित्व को स्वीकार करने से और अपने अपने संसार के भीतर कर्तव्यों को निभाने से हम सुखी रह सकते हैं। तो इस तरह से आश्रित जब व्यक्ति होते हैं वो सुखी रहते हैं, अभय का अनुभव करते हैं, तो फिर हमारे कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे प्रहलाद निर्भय थे, हिरण्यकश्यप ने कितना कुछ प्रयत्न किया परंतु प्रहलाद ने एक बार भी डर के मारे ऐसे नहीं कहा भगवान बचाओ बचाओ। अपने मन में संतुष्ट थे प्रहलाद, वो जानते थे कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, वो सुखी थे क्योंकि वो आश्रित थे। चिंता कौन ले रहे थे? भगवान ले रहे थे। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारे बारे में सोचते हैं, भगवान हमारी चिंता करने लगते हैं। अभी अभी श्वेतद्वीप प्रभु हमें बता रहे थे, वो तुकाराम की कर्नाटक के बारे में बता रहे थे कि जब तुकाराम महाराज वो उपवास कर रहे थे, जबकि उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ आदि जो हैं वो पानी में डाल दिए गए थे अन्यों के द्वारा, तो उपवास कर रहे थे 13 दिन और विट्ठल देव फिर उनके सामने प्रकट हुए और विट्ठल देव को उन्होंने कहा तुकाराम ने कि 13 दिन मैं उपवास कर रहा था, आपने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में? तो विट्ठल देव उत्तर दिया, मैं भी तो उपवास कर रहा था, मैं कैसे खाऊं? तो उस समय से तुकाराम ने निश्चय कर लिया कि अब से मैं उपवास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो भगवान चिंता ले लेते हैं, वो उपवास करने लग जाते हैं। तो जब हम किसी का आश्रय लेते हैं तो हमारी चिंता को देखने से हमारे जो पालक होते हैं वो ज्यादा चिंतित होते हैं। तो आश्रित व्यक्ति को सुखी रखने के लिए पालकों को ज्यादा तकलीफ लेनी पड़ती है। इसलिए जब बच्चा जो होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कभी अपने माता पिता से नहीं पूछता कल मुझे भोजन मिलेगा, या कल मैं भूखा रह जाऊंगा, नहीं, बच्चे को बिल्कुल विश्वास है कि माता पिता मेरा देखभाल करेंगे, कल का भोजन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे। माता पिता को चिंता रहती है बच्चे के बारे में, कल कहाँ से करें, क्या करें, लेकिन बच्चा निर्भय रहता है, जैसे यहाँ की भाषा में कहें तो बिंदास रहता है। तो भक्त भी बिंदास रहता है। तो पत्नी के सुख के लिए पति को चाहिए कि वो थोड़ी चिंता ले। इस तरह से पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे बताया गया था 9:40 तक समाप्त करें ताकि प्रश्नोत्तर हो जाएं। हाँ जी, तो आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये मराठी में किसी ने कविता लिखी है इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी, गद्य में, पद्य में नहीं।
कर्तव्यों को पहले नहीं देखते, पहले चाहते कि अधिकार हमारा मिले, फिर हम लोग टेंडेंसी रहता कि हम लोग कर्तव्य करेंगे सर। तो ये टेंडेंसी को कैसे
करना चाहिए? अधिकार लेने से, अरे कर्तव्य करने से। जब कर्तव्यों के ऊपर हम जोर देंगे, कर्तव्यों को निभाएंगे अच्छी तरह से, फिर अधिकारों के बारे में इतना हम सोचेंगे नहीं। यदि हमारी चेतना हमारे कर्तव्यों पर अधिक रहती है तो अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम अधिकारों के ऊपर ज्यादा विचार करते हैं, न अधिकार मिलता है न हम कर्तव्य करते हैं। ठीक है, प्रतिलोम विवाह में बहुत सारे झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच में, चाहे वो भक्त हो या न हो। तो क्या ऐसे हो सकता है कि कभी पत्नी वो पति का स्थान ले और पति के ऊपर नेतृत्व जमाए? वो तो होता ही है ना हर एक घर में। हाँ, तो ये प्रश्न है कि कथा में बताया गया था कि हमें चिंता लेनी चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, परंतु आपने ये भी कहा कि बड़े शांतिपूर्वक शांत मन से हमें अपना आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए। ये एक विरोधाभास सा लग रहा है, तो इसका समन्वय कैसे किया जाए? वैसे जब हम कहते हैं कि चिंता लेनी चाहिए, इसका मतलब है कि अन्यों की प्रगति के लिए चिंता लेनी चाहिए। हाँ, और अपने प्रगति के लिए भी चिंता, इस तरह से कि हम कोई गलत काम कहीं ना करें, हम कोई गलत जगह नहीं जाएं, गलत कोई चीज कहें नहीं, करें नहीं, ये चिंता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बार ये कहा अपने शिष्यों से कि मेरी आपसे शिकायत यही एक है कि आप माया से पर्याप्त मात्रा में डरते नहीं हो। माया से जितना डरना चाहिए उतना नहीं डरते हो, ऐसे एक बार प्रभुपाद जी ने कहा। अच्छा, और एक प्रश्न है। नहीं, समझ में नहीं आया प्रश्न। क्योंकि यह भौतिक जगत है, यहां कोई भी पूर्णतया प्रसन्न संतुष्ट नहीं होता, तो आश्रितों को कैसे संतुष्ट किया जाए? बहुत अनुभवी व्यक्ति बोल रहे हैं। हाँ, ये तो सही है कि 100% तो सुखी रहना संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु सही मार्ग में चल के जहां तक हो सके हमें करना चाहिए। निश्चित जानना चाहिए कि कुछ न कुछ तो हर कदम कुछ न कुछ बाधाएं आती रहेंगी। भगवान ने सृष्टि की रचना ही तो ऐसे की है, क्या किया जा सकता। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्ताम स्थिति क्षस्व भारत। बस यही उपाय है। जो भी बाधाएं कष्ट आते हैं समय समय पर, उनको स्वीकार करना चाहिए, सहन करना चाहिए और ज्यादा परवाह न करके भक्ति करते रहनी चाहिए। यदि माता पिता भक्त नहीं है और पुत्र भक्त है, तो वो माता पिता जब आपस में बहस करते हैं तो पुत्र को क्या करना चाहिए? थोड़ा कीर्तन कर ले तो अच्छा है। एक भक्त बता रहे थे, उड़ीसा के हैं, कि बुजुर्ग हैं काफी, उनके कोई मित्र थे और उनके परिवार में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। बड़ा परिवार था, कभी इनका इनसे झगड़ा, कभी उनका उनसे झगड़ा, और ये फिर बातें वाद विवाद बढ़ते हो तो ये हैरान हो जाते थे। तो बहुत समझाने की कोशिश करते, इधर भी उधर भी कुछ, कहीं ये ठीक होता तो कहीं दूसरी जगह कुछ शुरू हो गया। फिर उन्होंने एक उपाय निकाला और वो रामबाण उपाय था। क्या किया कि जब भी कहीं उन्होंने देखा कि घर में झगड़ा शुरू हो गया, अपने बड़े करताल लेते थे और बैठ के जोर से कीर्तन करना शुरू करते थे। जोर से, इतने जोर कीर्तन के कारण जो झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे को सुन भी नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर वो बंदी हो जाते थे। तो कोई छात्र हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि ऐसे जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि तुम्हारे पढ़ाई भी कृष्ण की सेवा समझकर करो, लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं शास्त्रों में कि ये भौतिक शिक्षण जो है ये व्यर्थ है, ये आत्मा को संतुष्ट नहीं करेगा। तो ये तो विरोधाभास है। जो हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसका कृष्ण भक्ति से क्या संबंध है? है अच्छा प्रश्न, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि देश काल पात्र के अनुसार हमें चलना चाहिए। पहले के जमाने में इस तरह के शिक्षण नहीं हुआ करता था, तो आजकल के जमाने में इस शिक्षण को महत्व दिया जा रहा है। और यदि कोई आगे चल के ब्रह्मचारी बने या न बने भी, फिर भी थोड़े बहुत दुनिया के बारे में ज्ञान आवश्यक है ताकि वो समझे कि दुनिया क्या चीज है। और आजकल विश्वविद्यालय में जाके कृष्ण भावना का ज्ञान मिलता है, इसके पहले तो नहीं मिला। या तो बचपन से हम इस मार्ग में चलते ताकि भौतिक शिक्षण की आवश्यकता न पड़ती, परंतु जब आप पहुंच गए हैं इस स्तर पे तो कर लेना अच्छा है ताकि आगे चल के कहीं कुछ हो जाए, बाहर दुनिया में जाना पड़े तो हम कम से कम, हमारे साथ कुछ है जैसे कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। साथ साथ विश्वविद्यालय में कुछ छोड़ के जाने से समाज में उत्पात हो जाता है। लोग सोचते हैं ये लोग क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, तो प्रचार के लिए अच्छा वातावरण नहीं होता। और साथ साथ शिक्षित व्यक्ति जब भक्ति करने लगते हैं तो समाज में लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं उनके बारे उनके मन में गलत फहमी होती है कि जो असफल होते हैं, जो कुछ दुनिया में कर नहीं पाए, वो लोग भक्ति में आते हैं। परंतु जब वो देखते हैं कि इतने सारे अच्छे अच्छे बुद्धिमान शिक्षित व्यक्ति भी हैं, तो उनका विचार बदल जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे दृष्टि से देखना चाहिए, ये प्रचार का ही एक कार्य समझ के करना चाहिए, बल्कि इतने अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए कि लोग कहेंगे देखो भक्ति करने की वजह से ऐसे हुआ। हम लापरवाही करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो सभी लोग दोष किसको देंगे? भगवान कृष्ण को देंगे, भगवद गीता को देंगे, मंदिर को देंगे। इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करना आवश्यक है। तो प्रश्न ये है कि आपने कहा था प्रवचन में कि लीडर या नेता वो है जो अन्यों के चिंताओं को नष्ट करता है और उन्हें उत्साही बनाता है, और इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि एक ओर हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है, दूसरी ओर अन्यों की चिंता लेनी है, तो दोनों में कभी कभी विरोधाभास हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? हमें दोनों करने चाहिए, परंतु आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि हम हमारी साधना नहीं कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बुद्धि, वो शक्ति, वो योग्यता, वो इच्छा कैसे आएगा कि जिससे हम अन्यों की सहायता कर सकें? फिर हम स्वार्थी बन जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति को पाना अर्थात हमारे साधन को ठीक से करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपना ख्याल हम रखेंगे तब जाकर हम अन्यों का ख्याल रख पाएंगे। एक डूबते हुआ व्यक्ति, डूबने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को कैसे बचा सकता है? पहले अपने आप को बचाए तब अन्यों को बचा सकता है। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक शक्ति पाना यह बहुत आवश्यक है। हमें यह कैसे देखना चाहिए कि परिवार के सारे सदस्य केवल गुरु कृष्ण की सेवा के ऊपर अपने नजर को केंद्रित करें और इधर उधर पदभ्रष्ट न हो जाएं? तो ऐसे एक वातावरण बनाए रखना चाहिए जिसमें कि श्रवण कीर्तन के ऊपर बहुत जोर दिया जाए, जो नेतृत्व की भूमिकाओं को निभा रहे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऐसे अच्छा उदाहरण पेश करें, ऐसे वातावरण निर्माण करें जिससे कि सारा परिवार आगे बढ़ सके। प्रभुपाद जी ने अपने कर्तव्यों को छोड़कर संन्यास क्यों लिया? हम सबको हमारे कर्तव्यों के बारे में बताने के लिए। नहीं तो हम अभी वैसे के वैसे ही रहते। वैसे कर्दम मुनि भी ने तो किया। कभी कभी अच्छा ये भी पतियों का भी आज दिन है ना, तो उनका प्रश्न है। तो जब पत्नी बहुत ज्यादा मांगती है घर में तो हम क्या कर सकते हैं? अभी हमें पता नहीं, वो आपस में ही आप दोनों को देखना होगा। यदि हम हमारे कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो किस हद तक हमें अधिकार को स्वीकार करना चाहिए? जिस हद तक आप कर्तव्यों को कर रहे हैं उस हद तक अधिकार स्वीकार, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो भक्त से प्रेम करना, क्या यह कृष्ण से प्रेम करने के रास्ते में बाधा बन सकता है? यदि यह प्रेम भावुक हो, भौतिक स्तर पे हो, तो बाधक बन सकता है। यदि आध्यात्मिक है भक्तिमय है, आत्मा के स्तर पे है, तो फिर ये प्रेरणात्मक बन जाएगा। प्रश्न ये है कि देवहूति को बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो इस समय में तो ये संभव नहीं है, तो क्या करना चाहिए। हाँ, ये सही है, उस जमाने में लोगों के जीवन की अवधि बहुत लंबी हुआ करती थी, इसलिए ज़्यादा समय रुकना तो उनके जीवन के हिसाब से तो इतना ज़्यादा नहीं था। इसलिए आजकल हमें अपने जीवन की अवधि के हिसाब से देखना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न है कि मैं अभी भक्त नहीं हूं, थोड़े दिन, क्षमा कीजिए, मैं भक्त हूं, मेरे परिवार के सदस्य भक्त नहीं हैं, थोड़े दिनों के बाद मैं अपने घर में जा रहा हूं, तो उनको भक्त कैसे बनाऊं? अच्छी तरह से भक्ति करके, बड़े प्रेम से उनके साथ व्यवहार करके, प्रसाद दे के, भक्तों से पहचान करा के, आप उनको धीरे धीरे से भक्त बनाइए। क्या लिखा है देखो, यदि पति या पत्नी दोनों में से एक आध्यात्मिक जीवन में उत्साही नहीं है तो उनको उत्साही कैसे बनाना चाहिए नियम पालन आदि में? पहले तो स्वयं हमें अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए, दूसरी तरफ हमें बहुत जोर जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए, बंदूक हाथ में लेकर नहीं जोर करना चाहिए कि करो, लेकिन प्रेरणा देनी चाहिए, उत्साह दिलाना चाहिए अपने उदाहरण से, अपने वचनों से, और अन्य भक्तों की सहायता भी हम ले सकते हैं इसके लिए। थोड़ा अच्छी तरह से आप स्पष्ट लिखिए, ठीक है। जिसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है उसे वैसे पता नहीं होता कि गृहस्थ आश्रम में कितने कष्ट होते हैं, और आगे चल के हो सकता है कि हम पछताएं कि नहीं प्रवेश किया होता तो ही अच्छा है। तो कैसे हम आगे बढ़ें भी, और क्या कदम हमें उठाने चाहिए जिससे कि आगे चल के हम पछताएं नहीं। अच्छी तरह से भक्ति कीजिए और फिर आगे जो होना है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भक्ति ही हमारे जीवन का ध्येय है, इसलिए ज्यादा इन चीजों में इतना विचार भी नहीं करना है। भक्ति के ऊपर, हमारी साधना के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर अच्छी तरह से हम ध्यान देंगे तो ये सारी समस्या अपने आप मिट जाएंगे। एक पति को क्या करना चाहिए जब पत्नी को गोविंदास में प्रसाद देना ज्यादा पसंद है, घर में नहीं? तो आप भी साथ में जाइए गोविंदास में। लेकिन हाँ, घर में पकाना यह भी आवश्यक है, इससे सभ्यता और संस्कृति बनाई रहती है। आजकल आधुनिक सभ्यता का एक लक्षण है कि लोग घर में पकाते नहीं हैं, गर्म भोजन नहीं लेते हैं, ये फास्ट फूड सब तैयार चीज़ें, पैक वाले पैक्ड आइटम्स जो होते हैं वो लेते हैं बाजार से खरीद के, थोड़ा गरम कर लिया या कुछ कर लिया या फ्रिज में रख लिया, फिर उठा के उसको गरम करके खा लिया, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में। यदि हम हमारे संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं तो परिवार को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। परिवार को बचाए रखना है तो कई चीज़ें चाहिए, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात है घर में प्रसाद बनाना। इसलिए घर में प्रसाद बनना चाहिए। हाँ, एक आध बार भले गोविंदाज में आए, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसमें आके खाएं कभी, या मंदिर में आके प्रसाद तो लेते ही हैं सत्संग के समय, या अन्यों के घर में जब सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सब ठीक है, परंतु घर में भी बनना चाहिए और बनाने आना चाहिए। घर में सिर्फ पति पत्नी भक्त हैं और दूसरे नहीं, तो हम उन्हें कैसे कृष्ण का परिवार समझें? तो क्या केवल भक्त ही कृष्ण के परिवार हैं? कृष्ण तो कहते हैं कि मैं परम पिता हूं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम् बीज प्रदः पिता। तो ये सारी दुनिया कृष्ण की संपत्ति है, तो जब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, या हमारे भाई बहन हैं, तो उन्हें कृष्ण का परिवार क्यों नहीं समझना चाहिए? समस्या तब आ सकती है जबकि वो ऐसे एक जीवन शैली मना रहे हैं या पालन करते हैं जो कि भक्ति से इतना विरुद्ध है कि हमारी भक्ति में बहुत कठिनाई होती है, तब समस्या है। फिर क्या करना चाहिए, आप भक्तों की सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो अब 10 बज गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि प्रभुपाद जी के आदेशों को का पालन करते हुए सबके जीवन में बड़े सुखी और शांति से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।